ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला अंतर्गत सायंकालीन ये प्रवचन का क्रम में आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 81। कंचित काल मुमा महेश भवतः पादारविंदार्चनैः कंचिद्यान समाधिविच्च नतिभिः कंचित कथा करणनैः कंचित कंचिदवेक्षणैश्च नुतिभिः कंचिदसामि दृशिम् यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमनः जीवन् समुक्तः खलु। बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते गोणित्वं सखिता मृदङ्गबहता चित्यादिरूपं ददौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवांस्त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतर स एव हि न चेत् को वा यदन्योऽधिकः तदन्योऽधिकः जननमृतियुतानां सेवया देवतानां न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनिम् अजनिमृतमृतरूपं शाम्भमी संभजन्ते अजनिममृतं शाम्भमी संभजन्ते यहि परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्ते जलदिमथन दक्षो नैव पातालभेदी नै शिव तव परिचर्यान् सन्निधाय दानाय गौर्या भव मम गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये सकल भुवन बंधो सच्चिदानंद सिंधु सदय हृदय गेहे सर्वदा संवसत्वम्। जलधिमथन दक्षो नैव पाताल भेदी, न च वन मृगयायां नैव लुब्ध प्रणि प्रवीण। असन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्यां सपर्यां, कथय कथमहं ते कल्पयानिन्दुमौले। भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए ये भाव व्यक्त करते हैं, यह प्राप्नोति मुदा तदर्पितमनः। जीवन समुक्तः खलु, जिसने अपने मन को पूर्ण रूप में तद अर्पितः आपके हवाले कर दिया है, आपको समर्पण कर दिया, ऐसा जो भक्त है वह मुदा प्राप्नोति परम आनंद का अनुभव कर पाता है, करता है, और वही स जीवन मुक्त, वही व्यक्ति वास्तव में पूर्ण रूप में जीवन रहते ही मुक्त हो जाता है। कैसे आपको अर्पण करेगा मन भाई? कंचित काल उमा महेश संबोधन है, हे उमा महेश। उमा के पति, उमा के स्वामी, उमा के महान ईश, उमा महेश जो महान भी है और ईश्वर भी है, और ये उमा के पति हैं, इसीलिए भगवान शिव को यहां संबोधन किया उमा महेश। हे उमा महेश, हे उमापति, जो तदर्पित मना, संसार में जो व्यक्ति, हर व्यक्ति मन वाले तो है ही है, भले ही धन वाले न हो, मन वाले तो है ही है। इस संसार में मन वाला न हो ऐसा कोई इंसान तो है नहीं, मन तो सभी के पास है, दो चीज सभी के पास है भाई, तन और मन। इस संसार में तन न हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, और मन न हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन धन न हो ऐसा बहुत मिल जाएंगे। जैसे आप हम, आप और हमको क्या कहेंगे? धन वाला कहेंगे कि धन नहीं है ये भी नहीं कर सकते, धन है ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने हैं वो पर्याप्त नहीं है, है ना? इसलिए है कैसे कहेंगे, जो है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन शरीर जितना है वो पर्याप्त है, जैसा है जितना है वो पर्याप्त है, और शायद 70 के ऊपर तो शायद वो भी पर्याप्त न हो। 70 के पहले पहले तो पर्याप्त था, 70 के बाद जो शरीर है वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि उस शरीर से कोई संतुष्ट तो है ही नहीं। किसी से पूछा जाए तुम इसी शरीर में खुशी हो राजी हो, इससे बढ़िया शरीर दिया जाए, बोले मरे बिना यदि बढ़िया मिलता है तो हम बढ़िया लेने को तैयार हैं, मरने के बाद यदि लेने को बढ़िया मिलता हो तो इसी में राजी है, जो है उसी में भी जीना तो चाहता है। और गीता के अनुसार तो उसको यह भी पक्का है इससे बढ़िया शरीर मिलने वाला है, फिर भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है ना? गीता में तो कहा है ना, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। ये तो पक्की बात है कि ये शरीर छोड़ने का हिम्मत करना हमको जरूरत है, इससे बढ़िया शरीर दूसरा मिलेगा, ये तो गीता प्रमाण है। लेकिन इसको छोड़े बिना मरे बिना, छोड़े बिना तो नहीं मरे बिना, दूसरा यदि मिल जाए तो बढ़िया था, कर ही रहे हैं भाई। जिस घुटने से असंतुष्टि नहीं होती है घुटना दूसरा बदल देते हैं, मरना नहीं पड़ता है, पड़ता है, बिना मरे घुटना बदलते कि नहीं। जिस किडनी से संतुष्टि नहीं है किडनी ट्रांसफर कर देते हैं, बदल देते हैं, मरे बिना बदल देते हैं। और जिस हार्ट से संतुष्टि न हो तो मरे बिना बदल देते हैं, तो अभी तो बहुत से पार्ट्स बदल देते हैं मरे बिना। तो वो हम करते ही हैं, उसमें राजी है, लेकिन मरना पड़े और तब बदले तो फिर वो राजी नहीं है। तो अभिप्राय क्या है, मन हमारे पास है, तन हमारे पास है, जो मन और तन है ये दोनों किसको अर्पण करना है, भगवान को अर्पण करना है। अब रही बात मरने के बाद की, पहले आजकल एक फैशन चल पड़ा है ना, मरने के बाद आंख दान करो, मरने के बाद देह दान करो, चल रहा है ना, एक अभियान ही चल रहा है भाई। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीते जी देह दान करो, जीते जी मन दान करो। तदर्पित मनाहा, जो व्यक्ति इसी जीवन में जीते जी ही अपने मन आपको अर्पण करने में समर्थ हुआ, तदर्पित मनाहा, उसकी दशा क्या होगी भाई, जिसने जीते जी अपने मन को परमात्मा को अर्पण कर दिया, उसकी दशा, उसकी भूमिका, उसकी अवस्था कैसी होगी। किंचित कालमुमा महेश भवत पादारविंदार्चनैः दशामी दिशिम, उसके दशा ऐसी हो जाएगी कि वह मुदा सहस्रम प्राप्नोति, अनायास ही उसको प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाएगी। तब वह जब तक बचा रहेगा, जिंदा रहेगा, तो क्या करेगा वो? किंचित भवता पादार बिंदार्चन, किंचित काल भवता पादार बिंदार्चन ही, वह उस समय तो आपके चरणों की अर्चना में व्यतीत करेगा, परमात्मा की अर्चना में व्यतीत करेगा। कुछ समय तो परमात्मा को अर्चना पूजा में लगाएगा, और कुछ जो समय होंगे तो वो क्या करेगा? बोले किंचित ध्यान समाधि विश्च, पूजा से जैसे निवृत्त हुआ वह ध्यान समाधि में चला जाएगा, और ध्यान समाधि से निवृत्त हुआ नति भी, तो आपके आपको प्रणाम करने में ही समय व्यतीत करेगा, नति भी, और उससे कुछ समय बच गया तो क्या करेगा वो? किंचित कथा करना नहीं, और कुछ समय आपके दिव्य कथा श्रवण करने में लगाएगा, कथा करना नहीं, और कुछ समय वो क्या करेगा? किंचित किंचित अवेक्षणैश्च, आपके दिव्य विग्रहों का, आपके दिव्य मूर्तियों का, स्वरूपों का अवेक्षण दर्शन में वो अपने समय को लगाएगा। किंचित नीति भी ही, और कुछ समय स्तुति में है, किंचित नति भी ही प्रणाम में, और किंचित नुति भी ही स्तुति में, आपकी प्रार्थना में लगाएगा। दशाम ईदृशिम, उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि आपके अलावा दूसरे का वह न दूसरे की बात सुनेगा, न दूसरे को देखेगा, न कोई दूसरे की सेवा करेगा, क्योंकि मन आपको अर्पण कर दिया। तो फिर आपके बाद आपके अलावा दूसरे का कोई महत्व ही नहीं रहेगा उसके जीवन में, और इसीलिए प्रारब्ध रहते हुए उसके जो जीवन है उसी से वो समय को व्यतीत करेगा, और जीते जी वो मुक्ति का अनुभव करेगा। ये जीवन मुक्त पुरुषों का भक्त अपने जीवन का जीवन मुक्ति अवस्था में इस तरह प्रयोग करेगा। बड़ा ही सुंदर भाव शंकराचार्य जी ने उस अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा की भूमिका की बात यहां इस तरह से वर्णन कर दिया। ये नहीं समझ लेना कि एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं। भक्त खाली केवल ध्यान करता रहेगा ऐसा नहीं, भक्त केवल पूजा ही करता रहेगा ऐसा भी नहीं, भक्त केवल प्रणाम ही करता रहेगा ऐसा नहीं। एक समय की बात है, हमारे नेपाल के कुछ भक्त लोग कहने लगे, महाराज भारत के सभी तीर्थों की यात्रा एक ही बार किया जाए तो तीर्थ यात्रा में सामूहिक रूप में निकले। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो कर लेते हैं, चलो। तो एक बस रिजर्व कर ली और चल पड़े। 50 दिन की यात्रा थी वो। कितने दिन की? 50 दिन की यात्रा थी। तो रोज नई जगह जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, नहा धो लो, फिर बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ, धर्मशाला में रात को सो, खाओ पियो, फिर सुबह दर्शन करो, 12-1 बजे 2 बजे तक दर्शन करो, फिर उसके बाद बस चढ़ो, फिर दूसरी जगह जाओ। ये 50 दिन इस तरह घूमते रहना था। तो उस ग्रुप में एक भक्त थी, महिला थी, वह बस से उतरते ही नहा धो के पहले मंदिर दर्शन करना उसका काम था, और कुछ नहीं। और प्रणाम करते करते मंदिरों में इधर प्रणाम करे उधर प्रणाम करे। अरे बाबा, मूर्ति तो उसको देखना ही नहीं है, कहीं अबीर गुलाल या चंदन लगा हुआ कोई पत्थर भी होगा ना, वो तुरंत प्रणाम करने लग जाएगी। अब सब लोग खा पी के बस में चढ़ने लगे, वो तो आई नहीं, कहां आए बोले, वो मंदिर में ही प्रणाम कर रही होगी, फिर जाओ मंदिर में खोजो। तो बोले चलो भाई सब तैयार, अभी 2-3 मंदिर और बाकी है दर्शन करने के, बोलती है। उसका तो सारा समय खाली प्रणाम में ही जाता था। तो ऐसा नहीं भाई, कीर्तन भी करो भाई, नति भी करो, नुति भी करो, स्तुति भी करो, प्रार्थना भी करो, और यदि कहीं मंदिर नहीं मिले तो फिर क्या करें महाराज। तो वैदिक सनातन धर्म बहुत ही विशाल है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म मार के मुसलमान बनाया तो है ही नहीं, इसलिए जो फ्रीडम यहां है, जो स्वतंत्रता इस धर्म में है, और इतने एकदम सरल है, व्यक्ति को केवल भक्त होने की जरूरत है, बाकी कुछ भी कर लो स्वतंत्र। वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा है, तुम यात्रा में हो, भगवान की पूजा कैसे करोगे, फूल तो है ही नहीं। पुष्पाणि संतु तब देव ममेन्द्रियाणि, महाराज ये मेरे इंद्रियां हैं ना 10, ये 10 के 10 इंद्रियां आपके लिए फूल का काम करें, फूल। पुष्पाणि संतु तब देव ममेन्द्रियाणि, स्कंद पुराण का श्लोक। तो एक पूजा हो गई पुष्प, फिर धूप क्या होगा महाराज, धूपो गरुर बपुरिदम, ये जो मेरा शरीर है यही आपके लिए धूप का काम करे। 75-80-90 वर्ष तक ये शरीर को हम जो रख रहे हैं किस लिए, भगवान शिव की पूजा में धूप का काम लग जाए बस, समझे कि नहीं। मशान घाट में जब आग लगाया जाएगा तो भगवान शिव मशान में ही रहते हैं ना, तो रहते हैं कि नहीं? बस जिस समय हमारा बेटा आग लगा देगा, बा धूप क्या कहना, भगवान शिव मक पड़े, क्या सुगंध आहा। संसारी लोगों को दुर्गंध आ सकता है, भगवान शिव तो आनंदित का अनुभव करेंगे भाई, आह क्या कहना। धूपो अगर उर बपुरीदम, इसलिए आप लोग शुक्ल यजुर्वेदी माध्यमिनी शाखा अंतर्गत रुद्री करते हो ना, रुद्री उस रुद्री में सातवां अध्याय क्या सुंदर है। लोमभ्यस्वाहा लोमभ्यस्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मागुंसेभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा अस्थिभ्य स्वाहा स्तभ्य स्वाहा रेतसे स्वाहा। देव जी, शरीर में जितने धातु हैं सबका नाम लेते हुए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वैदिक सनातन धर्म में यही अंत्येष्टि कर्म है, इसलिए अंत्येष्टि कर्म जरूरी है। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि कर्म। इसको अश्वमेध यज्ञ कहा है क्योंकि तुम और हम अश्वमेध यज्ञ का नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो साधन नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है कि वो अश्वमेध यज्ञ करें। तो फिर हमें अश्वमेध यज्ञ करना हो तो क्या करें? बोले ये यही अश्वमेध यज्ञ, जीवन को इस भावना से तैयार करके रखो, उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, वेद आरंभ यहां से होता है। ये अपने सिर को ही वो घोड़े का सिर के रूप में भावना करना है। वात प्राण चक्षुः आदि, तो वही लोमभ्यस्वहा लोमभ्यस्वहा, शरीर में जितने भी रोम हैं वो भी उसी यज्ञ में आहुति हो, ये मंत्र पढ़ा जाता है श्मशान में, श्मशान क्रिया में। तो हमसे पूछते महाराज मरने के बाद देह दान कर देना चाहिए मेडिकल को? भाई देह दान तक करो, ये लोमभ्य स्वाहा लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेधभ्य स्वाहा, ये कैसे होगा फिर? ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा फिर बोलो? हाँ, तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? पुष्पाणि संतु तव देव ममेन्द्रियाणि धूपो गरुर बपुरिदम हृदय प्रदीप। पंचोपाचार पूजा होती है ना, पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन, यही पंचोपचार है। इंद्रियां पुष्प हो गए, शरीर धूप हो गया और हृदय दीप हो गया। प्राणाहविंसि करवाणि तवाक्षताश्च, अंतःकरण जो चित्त बुद्धि और अहंकार है वही तवा अक्षता, आपके लिए अक्षता हो। या फिर पांच ज्ञानेन्द्रियां पुष्प हो तो पांच कर्मेन्द्रियां अक्षता हो। प्राणा हविष्य, ये जो प्राण है यही आपके लिए नैवेद्य हो। पूजा फलम व्रजतु सांप्रतमेश जीवः। महाराज, इस प्रकार से ये जीवात्मा आपकी पूजा करेगा तो उसको इस पूजा का फल तो मिलना ही चाहिए। तो ये भक्तों की अवस्था, और भक्तों की दूसरी अवस्था का यहां वर्णन करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। भगवान विष्णु ने जो भक्ति की है, विष्णु की हर क्रिया शिव भक्ति से भरा हुआ है, और शिव की आज्ञा से ही शिव को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान विष्णु का पूरा जीवन समर्पित है। इस 82वें श्लोक के द्वारा भगवान विष्णु की शिव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। बाणत्वं वृषभत्वं अर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा ये कथा, ये श्लोक का अर्थ आप सुनेंगे ना, बड़ा आश्चर्य लगेगा। और बिल्कुल सत्य है ये कथा, बिल्कुल यथार्थ है वो। घोड़ित्वं सखिता मृदंग बहता चित्यादि रूपं ददौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवांस त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतर सये बहिनते ओ वा तदन्योऽधिकः। हरि, भगवान विष्णु हरि, हरति पापानि इति हरि, हरति दुःखानि इति हरि। अज्ञानं तत्कार्यं च हरति इति हरि। हर हरि व्युत्पत्ति एक ही है, हरि ने, हरि ही, हरि ने, विष्णु ने आपके प्रसन्नता के लिए क्या नहीं किया। बाणत्व, आपने कहा कि तू बाण बन जा तो भगवान विष्णु बाण बन गए। कथा मालूम है कि नहीं, त्रिपुरासुर को मारना था तो शिवजी बायक और कोई मारने में समर्थ नहीं था, विष्णु खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, ब्रह्मा खुद त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए, इंद्र वरुण आदि सब त्रिपुरासुर को मारने में असमर्थ हुए। अब शिव बायक और कोई भी त्रिपुरासुर को मार नहीं सकता है, और शिव भी अपने पास जो प्रसिद्ध उनके हथियार हैं उस त्रिशूल से त्रिपुरासुर को नहीं मार सकते, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था। किसी भी देवी देवताओं के हथियार जो प्रसिद्ध है उन हथियारों से मेरी मृत्यु न हो, ले जाओ। अब विष्णु कैसे मारेंगे उसको, क्योंकि उनका प्रसिद्ध हथियार सुदर्शन चक्र है। अब विष्णु मारेंगे तो सुदर्शन चक्र से, और उससे उसकी मृत्यु न हो तो कभी विष्णु कैसे मारेंगे उसको। और शिवजी का हथियार है त्रिशूल, उससे वो मरना नहीं। देवी का हथियार है तलवार खड़का आदि, उससे मरना नहीं। ब्रह्मा जी का हथियार ब्रह्मास्त्र है, नहीं मरेगा उससे। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी से, तुमने क्या वरदान दी? बोले मैंने तथास्तु तो कह दिया। तथास्तु तो कह दिया मैंने, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा कि भाई प्रसिद्ध किसी भी देवी देवताओं के कोई भी हथियार से मेरी मृत्यु न हो, फिर उसको मारेंगे कैसे? पत्थर से वो न मरे, बोलो। भगवान ने शिव ने कहा कि ठीक है, उसने उसने क्या, उसके बाप ने भी कभी नहीं सुना होगा ऐसा हथियार, हम तैयार करते हैं। महाराज कैसे? रथ च्यवणी अंता, मैंने स्तोत्र याद कर लो, पुष्पदंताचार्य जी ने उस चित्र को इस श्लोक में रख दिया है। रथ च्यवणी अंता सतधृति रगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रारकौ रथचरण पाणी सरयति दिदक्ष्योस्ति कोयम् त्रिपुरतृणमाडंबर विधिर् विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्र प्रबुधिया। रथ छोणी, पृथ्वी को रथ बना लिया। यंता सतधृति, ब्रह्मा जी को सारथी बना दिया। आज तक कहीं भी कहीं उल्लेख ही नहीं है ब्रह्मा जी सारथी बने, कृष्ण सारथी बने, ये तो समझ में आता है। ब्रह्मा सारथी बन गए, ये कहीं सुनने में आया? बना दिया। पृथ्वी रथ बनाया, ये कहीं सुनने में आया? नहीं, बना दिया। समझे रथ पाणी धनु, रथ पाणी रथ चक्र पाणी है ना, सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में, उसको तो धनुष बना दिया, तीर बना दिया। भगवान विष्णु को कहा कि तुम तीर बनो। सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया, ब्रह्मा जी को सारथी, पृथ्वी को रथ, सूर्य चंद्र को रथ के पहिए, लेव जी, और विष्णु को बनाया बाण। वो खुशी से बन गए विष्णु। किसके लिए बने? तो शिव की प्रसन्नता। उन्होंने कहा कि तुम्हें बाण बनना पड़ेगा, तब हम त्रिपुरासुर को मारेंगे। बोले हम बन जाएंगे महाराज। ब्रह्मा जी को कहा तुमको सारथी बनना पड़ेगा, तब हम मारेंगे। बोले बन जाएंगे महाराज। सुमेरु पर्वत को कहा तुझे धनुष्मान बनना पड़ेगा, बन जाएंगे। तो भगवान विष्णु बाणत्वम, शिव की प्रसन्नता के लिए विष्णु बाण भी बन गए। दूसरा प्रसंग, शिव की ही प्रसन्नता के लिए, शिव के प्रसन्नता के लिए वृषभत्वम बैल भी बन गए हैं। भगवान विष्णु बैल बन गए वृषभत्वम। उसी प्रसंग में त्रिपुरासुर के मारने का प्रसंग था। ये पृथ्वी को रथ बनाया था, सूर्य और चंद्रमा को रथ के पहिए बनाए थे, ब्रह्मा को सारथी बनाया था, सुमेरु पर्वत को धनु बनाया था, और उस पृथ्वी रूपी रथ को तां खींचने वाले घोड़े क्या थे, उस श्लोक में इसका वर्णन नहीं किया। पुष्पदंताचार्य जी घोड़े क्या थे, सारे वेद के ऋचाओं को मंत्रों को घोड़ा बनाया था भगवान शिव ने, हैं? देख लो। और जब भगवान शिव ने वेद के मंत्रों को घोड़ा बनाया और युद्ध करने के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े, तो वेद के ऋचाएं घोड़े बनकर खींचते खींचते घोड़े टिक गए, उसके घुटने टिक गए, वेद की ऋचाएं असफल हो गई, पृथ्वी रूपी रथ को तांने में खींचने में कमजोर पड़ गए। हाँ, और कितनी ऋचाएं हैं बोलो, 1,00,000 मंत्र हैं, तो 1,00,000 घोड़े इस रथ को खींचने में असमर्थ हो गए। तो भगवान शिव ने विष्णु की तरफ इशारा किया, ये वेद रूपी घोड़े तो इस रथ को नहीं खींच पा रहे भाई। तो भगवान विष्णु ने तुरंत ये घोड़ा बनो, क्या कहते हैं, बेसब बन गए। कहा कि इस रथ में नहीं तो चलो मेरे कंधे पर चढ़ो, मैं चलता हूं। तो वहीं उसी पुराण में इसका वर्णन है। तो भगवान शिव को पीठ में ढोकर भगवान विष्णु उस युद्ध में आगे बढ़े, ये भी पुराण का प्रसंग है। ये प्रसंग लिंग पुराण में आता है। तस्मिन् आरोहति रथम कल्पितम लोक संवृतम शिरोभि पतिता भूमौ तुरंगा वेदरूपिणी। वेदरूपी घोड़े गिर गए, खींच नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, वृषेन्द्र रूपी चौथाया, वृषभ का सर्वश्रेष्ठ वृषेन्द्र, तापया मास वै क्षण भगवान धरणी धरा। भगवान विष्णु तुरंत वृषभ का रूप धारण करके फिर उस रथ को तान खींचने लगे। तो वो हो गया वृषभत्व। शंकराचार्य जी को तो ये पता था, इसलिए उसका संकेत कर दिया। भगवान विष्णु शिव को प्रसन्न करने के लिए बाण भी बन गए और वृषभ भी बन गए, सांड भी बन गए। अर्ध बपुसा और भगवान शिव विष्णु, भगवान शिव का आधा शरीर भी बन गए, इसलिए हरिहर हरिहर मूर्ति है, आधा शिव आधा विष्णु। यौ तौ संघ कपाल भूषित करौ मालास्थि माला धरौ। एक हाथ में शंख है, एक में कपाल है, एक गले में, एक साइड में वैजयंती माला है, एक साइड में निरकर है अस्थि माला। ये भगवान शिव का हरिहर स्वरूप है। तो उसी को संकेत कर दिया। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए विष्णु ने आधा शरीर शिव को अर्पण कर दिया। उधर संकेत कर दिया कि अर्ध बपुषः। यहां तक कि भगवान शिव की पत्नी भी बन गए। कौन? देव जी भार्या तुम, ऐसे पुराण में इसका प्रसंग है। मोहिनी रूप धारण करके बच्चा पैदा किया, एक बेटा, कथा प्रसिद्ध है। है। जब देवासुर अमृत मंथन हुआ तब असुर लोग उस अमृत के लिए झगड़ा करने लगे, देवता झगड़ा करने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और जाकर असुरों को सम्मोहित किया। अरे झगड़ा नहीं करो, हम तुम्हें बराबर बांट के पिला देंगे, झगड़ा मत करो। तो असुर तो तुरंत मोहिनी पर मोहित हो गए और उसके बातों पर आ गए। तुम ईमानदारी से बांटना, हां बोले हां हां हम ईमानदारी से बांटेंगे। आज तक दुनिया में माया ने ईमानदारी से काम किया है, माया का नाम ही ईमानदारी से काम करे तो उसका नाम माया हो सकता है? कह दिया हां हां। लेकिन ये तो अमृत है भाई, तुम लोग आज तक तो दारू पीते रहे, मदिरा पीते रहे। भगवान विष्णु ने कहा, मोहिनी ने कहा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, इसका लगता है कि तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं हो। और दुर्गंध शरीर से आ रहा हो तो दुर्गंध युक्त मदिरा पान करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मदिरा पान करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, है? अभी तक तो चलता था, लेकिन आज अमृत पान करना है। इस हालत में अमृत पान नहीं किया जा सकता है, तो क्या करें? जाओ नहा के। और ख्याल ये रखना, रामदेव बाबा ने पंचगव्य साबुन बनाया वो लेके जाना। मोहनीश प्रसन्न हो गया, है खूब नाना दुर्गंध सब हटाना है। और साबुन कहता तो ये नाराज हो जाता फिर, है पंचगव्य साबुन का नाम है वो, रामदेव बाबा का बनाया हुआ साबुन का नाम रखा पंचगव्य। वो लेके जाना, बढ़िया नहा के आओ, फिर उसके बाद तुम्हें अमृत पिलाएंगे। देवता लोग असुर लोग तो गए नहाने के लिए पंचगव्य साबुन लेकर, और इधर भगवान विष्णु ने विचार किया कि यही मौका है। देवताओं को कहा कि अब समय बर्बाद मत करो, बैठ जाओ लाइन में सब फटाफट। तो सब लाइन में बैठने लगे तो राहु जो था, हम गंगा नहाने जा रहे पंचगव्य साबुन लेकर, ये लोग पंक्ति लगाने लग गए, कहीं गड़बड़ है भाई, है तो पता नहीं किस जन्म का संस्कार जग गया हो। ये औरतों पर ज्यादा भरोसा मत करो बेटा, अपने आप को समझाने लगा है, भरोसा मत करो ज्यादा। तो फाड़ से उसने असुर कपड़ा फेर फार के बढ़िया धोती लाके तिलक तुलक लगा के आत्मानंद की तरह बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में थाल लेकर। भगवान विष्णु को ध्यान नहीं रहा, और को भी ध्यान नहीं रहा। जब भगवान विष्णु फटाफट बांटने लगे तो उसके थाली में जब अमृत पड़ा तो अमृत पड़ते ही वो तो पान करने लग ही गया, प्रतीक्षा ही नहीं किया कि नमः पार्वती पते बोलेंगे बोलेंगे, प्रतीक्षा ही नहीं किया, आए आते ही पीने लग गया। तो सूर्य ने देखा ये तो जल्दीबाजी करने वाला असुर होता है, है? ब्रह्मार्पण मंत्र न पढ़े बिना खाने लग जाए वो असुर होता है, हाँ। इसने यही किया, विष्णु के तरफ इशारा किया कि ये कोई छद्म व्यक्ति है, प्रच्छन्न देवता है, है, इसने पी लिया तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया विष्णु ने, क्योंकि गले से नीचे उतर चुका था, मरा नहीं, तो दो हो गए, तो सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। अब जब उधर से असुर लोग सब नहा धो के आए, अमृत पिलाओ, बोले घड़ा तो खाली हो गया, क्या हुआ? बोले पी गए सब देवता। हाँ, तो ये बात भगवान शिव के यहां पहुंच गई, शिव तक पहुंच गई ये बात, भगवान विष्णु ने इस तरह असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाई, मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव को लगा कि ये मोहिनी रूप कैसा होता है, जरा देखना चाहिए, तो भगवान विष्णु को बुला लिया। तो आपने सुना है मोहिनी रूप धारण करके असुरों को ठग कर हम देवताओं को अमृत पिलाया, बोले हाँ महाराज वही किया है, कृपा करके मुझे दिखाओ ना मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं महाराज, आप इस रूप को दर्शन न करो, ये आपके लायक नहीं है वो रूप। शिवजी ने हट किया, नहीं नहीं भाई दिखाओ, एक बार दिखा दो, देखने में क्या हर्जा है। अब जब शिव ने जब आग्रह की तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा भाई दिखा देंगे। प्रसंग बनाकर भगवान विष्णु ने वो रूप दिखा दिया शिव जी को, क्योंकि मोहिनी थी, मोहिनी रूप था तो मोहित तो होना ही जरूरी था, यदि शिव मोहित न होते तो रूप की सार्थकता न होती, मोहिनी ये सार्थक न होता, तो मोहिनी इस रूप को सार्थक करने के लिए भी भगवान शिव को सम्मोहित तो होना ही पड़ा। ऐसे सम्मोहित होगा कि जब पकड़ने के लिए उठ खड़े हो गए, पुराण में सब प्रसंग है, बड़ा विभत्स अवस्था है भाई, दौड़े आगे आगे मोहिनी भगवान विष्णु मोहिनी, पीछे पीछे भगवान शिव, दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे, पकड़ लिया शिव जी ने, पकड़ लिया। हरी इच्छा थी तो एक बेटा पैदा हुआ, मैंने परसों भी संकेत किया था ना, उस बेटे का नाम है अय्यप्पा, वेद में उसका नाम है शास्ता पुरुष, दक्षिण में उसको अय्यप्पा, दक्षिण भारतीय नाम में अय्यप्पा बोलते हैं, वेद ने उसका नाम रखा शास्ता पुरुष। हम लोग बोलते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, पूजा करते समय बोलते हैं ना, उनमें से जो ग्राम देवताभ्यो नमः है वह शास्ता पुरुष है, वही है हरिहर पुत्र। तो उस समय में मोहिनी रूप फिर शिवजी को दिखाकर भगवान शिव की पत्नी बन गए, यही भार्यात्व। भगवान शिव की इच्छा से ही ना मोहिनी रूप दिखाकर पुत्र पैदा किया, यही तो भार्यात्व है विष्णु ने। बाणत्वम वृषभत्वम अर्ध बपुषा भार्यात्वम आर्यापते, आर्यापते संबोधन है, आर्य माने पार्वती, उनके पति आर्यापते, आर्या आर्य आर्या पार्वती, घोड़ीत्वम बराह रूप धारण किया, अभी भगवान विष्णु ने शिव के आज्ञा से पृथ्वी को लाने के लिए बराह का रूप धारण किया, या ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता लगाते समय में बराह रूप धारण करके नीचे चले गए थे, तो वही भौणित्वम, सखीता, भगवान शिव सखी बनकर, नहीं विष्णु सखी बनकर शिव के सान्निध्य में रहे। ये सब पुराण में अलग अलग प्रसंग हैं। मृदंग बहता तांडव नृत्य के समय में मृदंग बजाने वाले भगवान विष्णु थे। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे तो वाद्य था नहीं, तो मृदंग बजाया विष्णु ने, तब भगवान शिव नाचने लगे। च इत्यादि रूपम ददौ, ऐसे और भी रूप भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्नता के लिए धारण किया है। कितने रूपों का वर्णन करें? तोत्पादे नयनार्पणम च हरिष्ते साहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदे कोने तस्मिन् निज मुदाहरण नेत्र कमलम। मैंने स्तोत्र में ये प्रसंग आप लोगों ने बहुत सुना है। उनका नियम था, भगवान शिव का नियमित रूप में अर्चना करना। अर्चना में प्रतिदिन सहस्र कमल की अर्चना भगवान विष्णु करते थे। एक दिन भगवान शिव की इच्छा से एक कमल कम हो गए, तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपने नाम का स्मरण किया कि मुझे कमल नयन कहते हैं। इसका मतलब मेरा नयन कमल है, इसलिए तो मुझे कमल नयन बोलते हैं। मेरे आंख गोबर के होते तो मुझे क्या बोलते हैं? गोबर नयन। मेरे आंख वास्तव में कमल है, इसलिए मुझे कमल नयन बोलते हैं। तो एक कमल की कमी है, और मेरे पास तो दो कमल हैं, दो नेत्र हैं, एक चढ़ा देता हूं, अर्जा क्या है? मेरी पूजा तो निर्विघ्न होगी ना, पूजा में खंडित नहीं होगी। तो निकाला और वही चढ़ाने लग गए, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए कि तुमको नेत्र निकालने की जरूरत नहीं है। पर संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया, समझे नहीं? मैं नेत्र भगवान शिव को अर्पण करूं, ये संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया। मानस पूजा में यही तो है, पुष्पाणि संतु मम इंद्रियाणि अक्षतान हृदय दीप आदि भावना, शरीर अगरबत्ती, ये तो भावना है। त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान्, त्वद्देह भागो हरि, पूज्यात् पूज्यतरः। आप कैसे हैं? ये सब कर्म करने के कारण भगवान विष्णु सारे संसार में पूज्य हुए। आज सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु ने आपकी पूजा की, इसीलिए भगवान विष्णु का महत्व बढ़ा, इसलिए सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा करते हैं। तो आप क्या हो गए? पूज्यात् पूज्यतर, पूज्यों के द्वारा भी पूज्य। बोलो, पूज्यों का भी पूज्य हो गया कि नहीं? इसलिए तो रामेश्वर, राम का भी ईश्वर रामेश्वर। सारे दुनिया राम की पूजा करते हैं और राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो शिव क्या हो गए? पूज्यात् पूज्य तर। सए वही न चेत को वा तदन्योधिक। और आगे कहते हैं, यह श्लोक बड़ा मार्मिक, यह 83वां श्लोक बड़ा मार्मिक।
श्लोक है सामान्य लेकिन बड़ा गंभीर है। जनन मृत्युतानां सेवया देवतानां नवति सुकलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनीमं अमृतरूपं सांबमीशं भजन्ति यहि अपरम सौख्यं तेहि धन्या लवन्ति। इसका सामान्य अर्थ है जनन मृत्युतानां देवतानां सेवया जनन मृत्युतानां देवतानां सेवया सुख लेसा न भवति। जन्मने वाले और मरने वालों के जनन मृत्युतानां हमेशा जन्मने वाले और मरने वाले जन्मने वाले मरने वाले ऐसे स्वभाव वालों का सेवा करके लेस मात्र भी सुख नहीं हो सकता। जनन मृत्युतानां सेवया देवतानां। बोले ठीक है, जन्मने वाले मरने वाले तो मनुष्य हैं, उनकी सेवा करके रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता, लेस मात्र भी सुख नहीं होता, लेकिन देवता तो जनन मृत्यु वाले नहीं है। बोले देवता ना वो भी जनन मृत्यु वाले हैं, वो भी सृष्टि के आदम में पैदा होते हैं और सृष्टि के अंत में मरते हैं। ये हमारे तरह सृष्टि के बीच में हजार बार पैदा और हजार बार मरते नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन पैदा तो होते और मरते भी है। पंचदशी में पढ़ा ना, जागृत के पदार्थ और स्वप्न के पदार्थ में अंत क्या है, तो विद्यारण्य मुनि जी ने बता दिया। स्वप्न के क्षणिक हैं, जागृत के थोड़ा नित्य हैं, नित्य माने लंबा समय के हैं। देवता एक बार जब पैदा होते हैं तो और मरते हैं, उस बीच में हम लाखों करोड़ों बार पैदा होते हैं और करोड़ों बार मरते हैं, ये फर्क इतना ही है। लेकिन देवता अमर नहीं, कभी पैदा नहीं होने वाले अज नहीं है, कभी न मरने वाले अमर नहीं है। इसलिए इस प्रसंग में वो भी जनन मृत ही है। तो इस संसार में मनुष्यों की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता, देवताओं की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी सेवा तुम करोगे वो खुद अनित्य है, तो तुम्हें नित्य सुख कैसे दे सकता है। जनन मृत्युतानां सेवया देवतानां न भवति सुख लेसा, उनकी सेवा करने वालों को रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता। संशयो नास्ति तत्र, और तुम्हें यदि शंका हो तो अनेक प्रमाण हम देंगे, इसमें शंका नहीं करना। संशयो नास्ति तत्र न भवति सुख लेसा, संशयो नास्ति तत्र, इस प्रसंग में जरा भी संशय शंका नहीं है, सुख नहीं हो सकता। फिर किसकी सेवा करें महाराज? अजनिम, अजनिम अमृत रूपम, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो कभी मरता ही नहीं, कौन है महाराज ऐसा इस दुनिया में? अंबया सहितम सांबम, अंबा सहित सांब, ईसम सांब ईसम भजन्ते। जो भगवान शिव की अजन्मा अमृत अविनाशी, अजन्मा अविनाशी भगवान शिव के जो सेवा करता है, भजन्ते भज सेवायाम भजन्ते, यह इह परम सौख्यम, वह इस श्लोक में परम सुख का अनुभव करता है। परम सौख्यम ते ही धन्या लभन्ते, और वही व्यक्ति इस संसार में धन्य है, और वही व्यक्ति का जीवन धन्य है, और वही व्यक्ति वास्तव में परम सुख आनंद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह परम सुख परम आनंद तो प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा ही सुंदर यह श्लोक है, इसका भाव हो, एक भगवान शिव हुए हैं भास्कर राय, उन्होंने शिव नामक कल्पलतिका नामक एक स्तोत्र की रचना की। वहां भगवान शिव ही परम भजनीय हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भजनीय सेवनीय भगवान शिव ही है, उसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए अन्य का आश्रय नहीं लेना। भगवान शिव परम भजनीय क्यों है, उसके लिए भास्कर राय ने 9 कारण बताया। इन 9 कारणों से प्रमाण सहित उन्होंने प्रस्तुत किया। पहला कारण दिया, क्योंकि भगवान शिव अनंत है, अनंत माने सीमा नहीं है जिनकी, जिसमें देश परिच्छिन्नता नहीं, काल परिच्छिन्नता नहीं, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं, इस अनंतता के चलते वही सबसे श्रेष्ठ भजनीय हैं। इसमें प्रमाण कौन है? बोले विष्णु प्रमाण है। अनल स्कंद वपुषा, अनलम परिच्छेत्तुम अनलम, पता लगाने के लिए विष्णु चले बराह रूप धारण करके नीचे, पता लगा नहीं पाए, ये विष्णु प्रमाण है कि भगवान शिव अनंत है। भास्कर राय ने ये प्रमाण एक हेतु तो ये दिया। दूसरा हेतु दिया, भगवान शिव परम उदार हैं, परम उदार होने के कारण ही भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उत्तम भजनीय है। इसमें उदारता प्रमाण कौन है? भास्कर राय ने कहा इसमें प्रमाण उपमन्यु है। उपमन्यु भगवान शिव का भक्त हुए हैं उपमन्यु। महाभारत का उपप्रसंग की तरह ही उपमन्यु का जीवन है। अश्वत्थामा ने मामा के घर गए और मामी ने उनको दूध पिला दिया। अश्वत्थामा को ये कहानी सुनाया ना तुम लोगों ने, क्योंकि उनके घर में तो दूध था नहीं, द्रोणाचार्य जी के घर में तो गाय थी नहीं, गरीब थे बेचारे। अष्टावक्र के यहां गए तो दूध पीने को मिल गया उनको। घर में आकर कहने लगे मां, मामी ने जो चीज दिया है वो मुझे पीने को, बहुत बढ़िया था। क्या था भाई? बोले नाम तो मुझे पता नहीं। कैसा था? बोले गिलास में दिया तो सफेद सफेद पानी जैसा था। तो समझ गई अश्वत्थामा की मां, कृपी ने समझ लिया ये जरूर गाय का दूध पिलाया होगा उसने। अब वो मांग रहे हैं मुझे गाय का दूध पिलाने पीने दो, और गाय है नहीं, कहां से लाके दें दूध। कहते अंदर गई और आटा घोल के, और आजकल का हॉर्लिक्स होता तो ठीक था तो गई और गर्म पानी में आटा घोली और लाके दिया। अब कहां गाय का दूध, कहां आटा घोला हुआ, फेंक दिया, ये तो वो चीज नहीं है। रोने लग गए। द्रोणाचार्य को कहा कि अरे बेटा ऐसा कर रहा है, ये गाय तो लाना चाहिए। बोले कहां से लाएंगे? बोले तुम्हारा मित्र राजा बन गया है, बचपन का सखा द्रुपद राजा बन गया है, तो उसके पास तो बहुत से गाय है, एक गाय मार के लाओ, जरूर देगा। तो पत्नी के कहने से बेचारे चले गए द्रोणाचार्य मांगने, कहां पहचानने से ही मना कर दिया। मेरा कौन मित्र, कौन सखा, कहां मैं राजा, घमंड देख लो। तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब तेरी बुद्धि को ठिकाना लगाना पड़ेगा। वो प्रसंग अलग था, यहां उपमन्यु का भी वही सेम ऐसे ही प्रसंग है। बहुत जिद्द किया तो उनकी मां ने कहा बेटा तुमको यदि दूध पीनी हो तो भगवान शिव की भक्ति करो, उनकी कृपा होगी तो गाय मिलेगा, फिर दूध मिलेगा तुमको, और नहीं तो हमारे पास गाय ही नहीं है, शिव की कृपा नहीं हुई है, वही दे सकते हैं तुमको गाय का दूध, हम तो नहीं दे सकते बेटा। तो उपमन्यु ने भक्ति की शिव जी की, और भगवान शिव प्रसन्न होकर उपमन्यु से कहा कि बेटा क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे गाय का दूध चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि कैसा भोला है बेचारा, हमारे सामने ये गाय का दूध मांग रहा है। तो भगवान शिव ने सिर में से थोड़ा सा निचोड़ लिया, क्या था, अमृत था ना, सोम चंद्रमा, उसमें से थोड़ा निचोड़ लिया, गिलास में डालकर ले बेटा दूध पी ले। लिया, मांगा था गाय का दूध, पिला दिया अमृत, इससे बढ़कर उदार और कौन हो सकता है? इसलिए शिव ही भजनीय है, दूसरा हेतु नौ हेतु दिया है ऐसा है। तीसरा हेतु भगवान शिव हमेशा सत्य के पक्षपाती हैं, असत्य के पक्षपाती नहीं है, इसलिए भी भगवान शिव भजनीय है। सत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति प्रसन्न और असत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति दंड, इति शिव सत्यनिष्ठा होने के कारण भगवान शिव ही भजनीय है। प्रमाण क्या है? ब्रह्मा और विष्णु ये प्रमाण है। वही ज्योतिर्लिंग के पता लगाने के प्रसंग में झूठ का आश्रय लिया ब्रह्मा, सिर काट दिया, और सत्य का आश्रय लिया विष्णु ने, तीनों लोक में पूज्य हो गए। चौथा हेतु है मृत्यु से सर्वथा रक्षा करने वाले हैं भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं। प्रमाण क्या है? मार्कंड ऋषि इसमें प्रमाण है। और थोड़ी सी सेवा से बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ पूज्य है, उत्तम है। प्रमाण क्या है? शिवपुराण में शिवरात्रि की कथा तुम लोगों ने सुनी है। एक ब्राह्मण का बालक था, वह बड़ा उटपटांग काम करता था, परिणाम ब्राह्मण धर्म से च्युत होकर चांडाल धर्म अपनाया था, चोरी करना, लूटना, यूं करना त्यूं करना, कोई सच्चरित्रता थी नहीं उसमें, तो जंगलों में रहता था। शिवरात्रि के दिन दिन भर व्रत बैठकर शाम के समय में गांवों का कोई भक्त भगवान शिव मंदिर में प्रथम प्रहर रात्रि को पूजा करने के लिए गया था, तो बहुत से पकवान नैवेद्य फल फूल हैं मिष्ठान्न लेके गया। अब वो चांडाल बेचारा वही मंदिर के पास में बैठा था, कोई आएगा कुछ लूटेंगे। वो अंदर गया भक्त, बत्ती जला ली, पूजा किया, एक प्रहर की पूजा की और सब मिष्ठान्न आदि पकवान फल फूल शिव को अर्पण किया और वो चला गया। उसके बाद वो चांडाल आया, वो अंदर घुसते ही बत्ती बुझ गई। तो कहां क्या रखा है उसको क्या पता, अंधकार में इधर टटोलता है उधर टटोलता है। उसके दिमाग में आ गया अपनी जो पुरानी धोती वो पहन रखा था उसको फाड़ा और एक दूसरा पत्थर लेके, क्योंकि वो जंगल में तो आग उसी तरह जलाता था, वो एक पत्थर में दूसरा पत्थर रगड़ो तो चिंगारी आती है चकमक, उससे आग बत्ती जलती, आग जल निकलता है, अग्नि निकलती है। उसने अपने पुरानी धोती का एक छड़ा फाड़ा और एक पत्थर का टुकड़ा कहीं से उसको मिल गया और शिवलिंग में मारा, जोर से मारा तो चिंगारी निकली, तो कपड़ा में अग्नि तो दिया हो गया, ले जा रोशनी हो गई मंदिर के अंदर। तब फटाफट फल मिठाई सब खोज खास के खाया है। संयोग की बात, वो शिवरात्रि का दिन था, दिन भर कुछ खाया नहीं था, व्रत हो गया और शाम के समय प्रथम प्रहर में उसने दिया जला दी। इतनी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर दूसरे जन्म में कुबेर बना दिया। जाओ, थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न होकर इतना दे देते हैं कि इतना दे देते हैं कि उसको फिर अब दुनिया में फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भी भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय है। छठे कारण, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त करने वाले भगवान शिव है। समुद्र मंथन में जब कालकूट निकला, अकांड ब्रह्मांड अक्षय चकित देव सूर्य कृपा, बिना समय में प्रलय होने लगा, तो उस कालकूट को समन करने का किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो सब जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने आराम से उसका पान करके संकट मोचन, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त कर दिया। इसमें प्रमाण है समुद्र मंथन का, नीलकंठ हो गए वो अपने आप, सातवां हेतु है, यदि उनकी उपेक्षा और तिरस्कार करके शास्त्र मर्यादा का उन्मार्ग करता है तो उसको दंड देकर सन्मार्ग में लगाते हैं। तो बिगड़ने वाले जिंदगी को भी सन्मार्ग में लगाकर सुधार देते हैं, इसमें दक्ष प्रजापति प्रमाण है, है? उनका अपमान किया, उन्हीं का अपमान किया, शिव का ही अपमान किया, वैदिक विधि का तिरस्कार किया, फिर भी उसको दंड देकर उसका उद्धार कर दिया और आगे परम शिव का भक्त भी बन गया दक्ष प्रजापति। हेतु है, आठवां हेतु दिया, परम हित का उपदेश करने के कारण भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उपासनीय हैं। हेतु क्या है? भगवान राम इसमें प्रमाण है, शिव गीता का उपदेश किया भगवान शिव ने स्वयं राम को और सनत कुमारों को तत्त्वमसि महावाक्य का ज्ञान मुद्रा से दर्शन उपदेश किया, यो भद्रया मुद्रया, इसलिए भी मोक्ष शास्त्र का उपदेश चिन्ह मुद्रा के द्वारा उपदेश करने के कारण सापूर्वे सामपि गुरु, इसलिए शिव सबसे उत्तम भजनीय है। नौवां हेतु दिया, परमात्मा की उत्तमता तो वेद ने सर्वत्र प्रशंसा की है, ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर आदि आदि। तो इन सब कारण से भगवान शिव ही भजनीय हैं, और भगवान शिव का भजन करोगे तभी वह नित्य सुख अमृत की प्राप्ति होगी, अन्यथा जनन मरण जन मृतों की सेवा करके लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।